काले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो तवैवास्मि नजिवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमाम चेन अंगश्यामलिं छटाभिरवि मन्दिकटेन्देवरम् जाटं जागृतभोजितं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि सद्दामानिनामोदरं राधास्कन्दनिवेचितजन उत्थान एकादशी है। आज से लौकिक कर्म क्रिया इत्यादि विवाह शादी सब आरंभ होंगे, इसलिए उत्थान एकादशी। आज ही के दिन श्री गौर कुशोरदास बाबा जी महाराज का तिरोभाव हुआ था। इसमें इसको विरह उत्सव किस लिए कहते हैं? विरह माने यहाँ तो गोकुशदास महाराज जी का तिरुभाव होने से दुख होना चाहिए, किंतु नहीं। वैष्णव का आविर्भाव जिस उद्देश्य से होता है उस उद्देश्य से उनका तिरुभाव ही होता है। तिरुभाव में बल्कि उनकी समस्त लीला कथाओं का, उनके चरित्र का, उनके उपदेशों का श्रवण स्मरण होता है, कीर्तन होता है, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। आज श्री रसानंद ब्रह्मचारी जी श्री लघोर को किशोरदास बाबा जी महाराज के अपराकृत जीवन चरित्र और उनके शिक्षाओं का 10 मिनट समय देता हूँ इसमें वर्णन। सभी वक्ता लोग 10 मिनट ही बोले, ऑल स्पीकर शुड टेक ओनली 10 मिनट।
A question may come, why is it a festival? Is not the disappearance day of Vaishnava the cause of great unhappiness? No. So, because on the disappearance day, then we remember all their pastimes, all their instructions, and all the things they gave to this world. Those things were not apparent at the time of their appearance. So it's called Tirubhava Mahotsav, Festival of Sun.
ओम ज्ञानशिबिराम्भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्पदि पादाम्बुजाय दीनम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द क्रियाद्वैतगदाधर श्रीपदादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद भगवानी तलीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज को चरण सरज में नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित
वैष्णव वैष्णव सदैव चरण में मिलता जो प्रणाम करता हूँ। आज श्रीला गौर श्रद्धा गोस्वामी महाराज महाराज का प्रिय भाव महामहोत्सव है। तो श्रीला उनका वंदना में ही उनकी महिमा को वंदना में ही प्रकाशित किया है। उनका वंदना है नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति विप्रलम्भर संभे पादाम्बुजाय नमः। कदि साक्षात वैराग्य मूर्ति कदि साक्षात वैराग्य की ये मूर्तिमान स्वरूप है, क्योंकि कद महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखि तुष्ट है गौर नारायण। महाप्रभु का जितने भक्त है कद मूल उनका ये वैराग्य प्रधान है। इसलिए कहते ये वैराग्य दो तरह का है, कहते एक में तो साधारण रूप में ऊपर से वैराग्य है और दूसरे रूप में विशेष पूर्वक अनुराग। इसलिए जिसमें बताए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा मेघ पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बोधरी जह तमाम प्रपद की सार्वभम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, उन्होंने वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग को जगत में शिक्षा देने के लिए आए। नर्मदास ठाकुर भी कहते हैं सनातन गोस्वामी के लिए वैराग्य योग भक्ति रसम प्रजत नैरिमा मन भीष्म कृपा पर दुख दुखी सनातनम स्तम प्रभु माश्रम। इसलिए यहाँ पर वैराग्य वैराग्य महाप्रभु बहुत वैराग्य शब्द आता है। इसलिए इसमें श्री गौरकिशोरदास महाराज का जो जीवन है एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसे जीवन को बताया रघुनाथ वैराग्य जना पाषाण था रेखा, इनका वैराग्य ऐसे इनकी जीवन में भी ठीक वैसे जो वैराग्य है श्रील श्रीमद भागवत ग्रंथ में द्वितीय स्कंध में कथा आती है। श्रील सुतो गोस्वामी कहते हैं अगर इसको निष्कंज रूप में संपूर्ण रूप में सभी का उपेक्षा रहित होते हुए अगर कोई निष्कंचन भक्त अगर भजन करना चाहते हैं कैसे भजन करेंगे, अगर कोई भक्त अगर प्रश्न करेगा भजन तो करेंगे लेकिन भजन करने के लिए सोने के लिए तो कहीं स्थान चाहिए ना। कहते क्या सोने के लिए भगवान इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाए, कहते पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, बोले भगवान इतने सारे नदी के लिए बना दिए, कहते पानी पीने के लिए कोई पात्र तो चाहिए, कहते भगवान ने अंजलि दे दिया, बोले कम से कम उसको इधर घर तो चाहिए, कहते भगवान गुफा तो बहुत सारे पर्वत में गुफा भी बनाए, कहते सोने के लिए तो तकिया चाहिए, बोले भगवान ने हाथे क्यों दिया है, कहते खाने के लिए तो कुछ चाहिए, बोले भगवान इतना सारे वृक्ष तो बना करके रखे। इसलिए उन्होंने जो वो जो भागवत में जो बताया कहते ये संपूर्ण रूप में ये गौर किशोरदास गोस्वामी बाबा जी महाराज का चरित्र में ये संपूर्ण रूप में इनका जीवन देखने को मिलता है। इसलिए इन्होंने रहते थे कहाँ पर, कभी जहाँ पर पायखाना का जो घर है कभी उसी में रह जाते थे किसी तरह से। अगर उनको किसी ने अगर बोला बोले तुम्हारा लिए घर बना देता हूँ, कभी नहीं ये विषय होता विषय वासना में मैं प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ, उससे तो ये पायखाना घर ही सही है। इसलिए वो जहाँ भजन करते थे विषय लोग आकर उनको डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए कभी कभी उन्होंने मांस की कांटा मछली को कांटा को चारों तरफ फेंक रखते थे। कहते लोग इसी डर से नहीं आए इसी भाव से नहीं आए आए कि बाबा तो मछली खाता है, व्यर्थ नहीं करे अपना भजन में। और रहने के लिए कभी कभी नाव का जो छैया होता है छोटे छोटे घर है किसी तरह से वहां रह जाते थे, वहां पर रह करके भजन कर लेते थे। कभी अगर बढ़िया बढ़िया खाने का कभी दुष्ट मन का कभी अगर इच्छा हो कभी कभी ये मिट्टी उठा करके जमुना की राधा कुंड की वो मिट्टी को उठा कर वो खा लेते थे, ऐसे उनके अंदर में ये वैराग्य देखने को मिलता है। और ये तो एक वैराग्य है लेकिन इनके अंदर में वैराग्य मतलब कहते विशेष पूर्वक अनुराग है। कहते इनके जीवन में भी विशेष पूर्वक भगवान का चरण में अनुराग देखने को मिलता था। एक भजन है कोठाए वो प्रेममयी राधे राधे, जिस रघुनाथ दास गोस्वामी की ये बड़े प्रिय कीर्तन है। जब इसी कीर्तन को श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज बड़े विभोर होकर के हाँ कभी यमुना का किनारा में, कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में, कोथाए वो प्रेममयी राधे राधे, हाँ कोथा जाके निधुवने, कोथा जाके सेवा कुंजे, एकदम विभोर होकर के श्री राधा रानी का वो कीर्तन करते थे। विभोर होकर के इनकी एक कीर्तन बड़ा प्रिय था, वो कीर्तन है कोरा कुहु नाभ जिया बहनो प्रेम रतन धन हेलाय हराई। ये कीर्तन इनका बड़ा प्रिय था, वो बड़े मार्मिक कीर्तन है। कदि जीवन किसी ने मिला है गोरा को नाभ जिया मई हूँ, कदि जीवन तुम्हारा बेकार गया, ये जीवन पा कर तुमने महाप्रभु का वंदना नहीं की, किसी को किस किला की आशा कर किसी को ला दिया, कदि संसार में कौन सा सुख पाने के लिए तुम संसार में हो, ये जीवन को दे करके तुम महाप्रभु का भजन क्यों नहीं करते, बड़े विभोर होकर के ये कीर्तन को गाया करते थे। इनका जो जीवन ही है कभी कभी हाँ कद इनके जीवन को साथ में कद श्रीला प्रभुपाद का जीवन ही कभी थोड़ी थोड़ी फर्क मिलता है। कद अगर किसी वृद्ध की महिमा को समझना तो किसको द्वारा वृद्ध की महिमा समझा जा सकता है, कद फाल को द्वारा है। कद ये गौरकिशोर दास भगवान महाराज का शिष्य कौन है, कद श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद के लिए हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव महाराज कहा करते थे, अभी तक जितने सारे आचार्य का वैशिष्ट को एक तरफ में कर दो, अगर प्रभुपाद का वैशिष्ट को अगर एक तरफ में किया जाए तो इनका वैशिष्ट कहीं सब आचार्य से कहीं कम नहीं मिलेगा, बल्कि इनका पल्ला भारी होते हुए मिलेगा, जिसने संपूर्ण विश्व में पृथ्वी के आचार्य नगरादि का सर्वत्र प्रचार नहीं मरना, ये वाक्य को जो संपूर्ण रूप में ये वाक्य को उन्होंने कृतकृत उन्होंने किया है, उसका फलभूत किया है। इसलिए प्रभुपाद जैसे व्यक्ति विद्वान ज्योतिष जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती उपाधि दी गई, जिन्होंने उनको पास में दीक्षा मंत्र लेने के लिए गए तो इनको उन्होंने प्रत्याख्यान किया, बल नहीं तुम भक्ति विनोद ठाकुर का संतान हो, इतने बड़े विद्वान मैं थोड़ी देर में तुम्हें शिष्य बना सकता हूँ, इनके लिए कितने बार इनको प्रत्याख्यान किया, लेकिन बड़े कठिनी से कहीं इनको उन्होंने शिक्षा मंत्र प्रदान किया। लेकिन प्रभुपाद का जीवन को साथ में इनके जीवन कभी थोड़ी थोड़ी कुछ वैशिष्ट लगता है। जैसे श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज प्रभुपाद को बताए थे, बोले देखो ये जो कलकत्ता है ये कलिंग राज्य है, ये कलिंग राज्य तुम्हें मत जाना। लेकिन प्रभुपाद जब कहीं उन्होंने आश्रम खोला, सर्वप्रथम उन्होंने कलकत्ता में वो आश्रम को खोला है, और इन्होंने श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज बड़े बैराग को साथ में किसी तरह से किसी पृथ्वी को नीचे ला करके किसी तरह से भजन किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने ठार बार को साथ में मठ मंदिर करते हुए उन्होंने सर्वत्र 64 मठ को उन्होंने स्थापन करके संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी को उन्होंने प्रचार किया। यहाँ पर मुझे फर्क दिखने लगता है, लेकिन तत्व का फर्क नहीं है। बोले क्यों, कहते गुरु वर्गो का जो निर्देश है, परंतु जो इच्छा है क्या इच्छा है, उनको इच्छा है कहते श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कला मध्य सदाति स्वदाति को, महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार प्रसार करना। महाप्रभु जिसको बोलते हैं सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास आहार आज्ञा सर्वत्र करवा प्रकाश, प्रति घरे घरे किया माधव ही विद्या बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, ये महाप्रभु का निर्देश है। इसलिए प्रभुपाद ने उनका मनोभीष्ट को जान करके महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था मानव संपूर्ण भविष्यवाणी को उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने प्रचार किया। एक दिन महाराज जी कह रहे थे कि अभी महाराज जी कैसे संपूर्ण विश्व में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महाराज जी कभी कहा करते थे अगर इसी समय अगर हमारा गुरुदेव होते, यद्यपि गुरुदेव नहीं थे वर्तमान में, लेकिन अगर गुरुदेव अभी थे तो अभी जो मैं संपूर्ण विश्व में जाकर के महाप्रभु का वाणी प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और मंदिर बना करके विश्ववासियों को भगवत भजन की जो मैं सुजन दे रहा हूँ, अगर गुरुदेव रहते तो कितने प्रसन्न नहीं होते। अगर इतने बड़े मंदिर अगर गुरुदेव नहीं बनाते, हम लोग जो थोड़ी थोड़ी भक्ति उन्मुख सुकृति को जब हम अर्जन कर रहे हैं, ये क्या हम अर्जन कर सकते थे। इसलिए तत्व पर यही गुरु वर्गों का इच्छा है। इसलिए और देखने को मिलता है। प्रभुपाद श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा था, मैं जब ये शरीर छोड़ूंगा मेरे प्यार में रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में मेरे शरीर को घुमाना। लेकिन प्रभुपाद ने जिस समय उन्होंने अपना शरीर को छोड़े, अभी जितने सारे बाबा जी लोग अगर इनको शरीर को समाधि देंगे तो कम से कम इनको समाधि में प्रणाम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रणाम मिलेगा। इसी लोक से सबसे बाबा जी लोग आ गए। प्रभुपाद को पता चल गई, प्रभुपाद वहां पर पहुंचे और प्रभुपाद वहां पर त्यागी को साथ में बताए कि ये केवल इनका त्यागी साधु, इनका केवल शिष्य मैं हूँ, तुम लोग कोई भी इनका शिष्य नहीं है। वहां पर अभी झगड़ा होने लग गया, कौन समाज देगा, अभी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ गए। प्रभुपाद वहां पर सीना तान करके बोले, अगर इनको अपराधी तो सही है, अगर एक साल के अंदर में अगर कोई बाबा जी जो शिष्य बोलते हैं त्यागी, अगर स्त्री संग अगर किसने नहीं किया तो वही केवल इनके शरीर को स्पर्श करके समाज दे सकता है, नहीं तो इनको शरीर को स्पर्श करेगा तो जल करके राख बन जाएगा। सारे बाबा लोग चुप हो गए। बोला अगर एक साल नहीं और छह महीना के अंदर में, इतना सुनते तो पीछे पीछे हटने लगी। बोले एक महीना के अंदर में और बाबा जी धीरे धीरे पीछे होने लग गए। बोले एक सप्ताह, बोले अगर गत रात तक अगर किसी ने मन में भी किसी स्त्री का स्मरण तक भी नहीं किया, अगर वो व्यक्ति यहाँ समाज दे सकता। देखते हैं पूरा मैदान खाली है। पुलिस लोगों ने कहा, आप विश्वास ही कैसे करोगे, जब मेरे को पूर्ण विश्वास है। इसलिए प्रभुपाद ने उनको रस्सी में रस्सी बांध लेकर प्यार में उनको घिसड़ना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद ने बोले, तुम लोग मूर्ख लोग रहे, आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का महत्व को नहीं जानते, उनका हृदय में तो भगवान बैठे हुए हैं, ब्रज राज में तो संपूर्ण अभिषिक्त है। जब हरिदास ठाकुर शरीर त्याग किया, महाप्रभु क्या आदर्श दिखाया, स्वयं उनको अपराधित शरीर को उन्होंने गोद में लेकर के उन्होंने स्वयं उन्होंने समाधि प्रदान किया। और तुम लोग इनको शरीर को लेकर के नवद्वीप में घिसड़ना चाहते हो, मूर्ख हो तुम लोग। गुरु बालकों का जो मनोभीष्ट है, इच्छा को समझना इतने आसान बात नहीं। इसलिए उन्होंने ये चीज को उन्होंने स्वयं लेकर के अपना गुरु जी को उन्होंने समाधि दिया। इसलिए उनका वैशिष्ट बहुत रूप में उनका वैशिष्ट है अपराधित जीवन। अभी अभी दूसरे दूसरे वैष्णव लोग अभी उनकी वैशिष्ट को उनका अवदान को बताएंगे। मैं यही बोल कर अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अद्भुत महाराज जी, he will speak something 10 minutes। लाउडर, प्लीज लाउडर।
ओम गणात्मंडस्य ज्ञानंजनाश्लोकम् चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितामेव भूतले स्वयं रूपकदामयं दरतिष्वारं
such activities as possession of his body after he left the world. But I'll leave that for somebody else to describe. And I would just like to remark about the dichotomy between the guru and the sishya. Because everyone probably knows that Gaur Kishore Das Babaji couldn't write his name. Neither could he leave. All right. So therefore, how is it that such a great scholar as Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswati Thakura accepted him as a spiritual master. And that lineage was established, in which, of course, Bhaktisiddhanta had so many scholars beneath him. People like Sridhar Maharaj, who was a great intellectual, Bhad Maharaj, another great intellectual, Siddhanti Maharaj, Obiel Kapoor, all following in the lineage of Lord Kishwara's Babaji, who was illiterate. So this is descriptive of the principle of bhakti. The spirit of bhakti is not dependent on scholarship, Vedic study, intellectualism, mental capacity. It's dependent solely on a current of prema, pure Shuddha Bhakti. So that current was recognized by Bhaktisiddhanta, and when he first approached Lord Kishwara's Babaji, of course he was refused because of that difference in the establishment of credentials of scholarship versus simplicity of Lord Kishwara. So Shrila Bhaktisiddhanta came back again on the urge of his father, Bhaktivinoda Thakur, to seek initiation again. So Lord Kishwara's Babaji said, "I will talk to Mahaprabhu and we shall see." So Bhaktisiddhanta was waiting and waiting with no reply coming. So finally, he again went to see the Babaji Maharaj and said, "Did you ask Mahaprabhu?" And Lord Kishwara said, "I forgot." So he led him on and on now with an empty heart. "How can I achieve connection with Krishna without connection with you?" So his father told him again, "You must go back, you must take initiation, and this should be the last time." So finally he met Lord Kishwara's Babaji on a bridge, the current of the river going beneath. He said, "Maharaj, if you don't accept me, I'm giving up my life, I'm jumping from this bridge." So Lord Kishwara said, "All right, I'll take you. Take back and I will initiate you." So that connection was there, established by the Mercy Guru Dorshoda Babaji. And there are two interesting accounts that I can remember in particular, which illustrate his mahima, his greatness. And one was surrounding the yoga pit before it was actually called the yoga pit. And Srila Bhaktisiddhanta had been there at 2 o'clock in the morning. And he saw Srila Bhaktisiddhanta's Babaji not there. So then later on in the day, he came up to the Babaji Maharaj and he asked them, because Bhaktisiddhanta had a habit of eating Ganga mud and also the mud from Radhakund for his diet. So as a consequence, he went blind. He couldn't see. And also, he had to cross the river, the Ganga River. So Bhaktisiddhanta said, "Maharaj, there's only jungles out there between here and what they call the yoga pit." I forget what they called it then. But he said, "How have you walked here? There was no path, only jungle. And did some little cowherd boy help you or something?" And the Maharaj, Lord Kishwara, just smiled, indicating that yes, actually Krishna had taken him to the yoga pit. And then he also said, "Well, how did you cross the river? Because on this side of the Ganga, there's no docks. There's no place for a boat to land. How did you cross the, beyond the Ganga?" Again, was it some small cavern board that took you across? So again, one nourish smile, indicating, yes, Krishna had taken him personally across to the yoga pit. So the other story I thought was interesting is in regard to his complete independence and disregard for anyone actually serving him. Generally, those who are filled with false ego and pride in religious orders that feel very happy to have other people serve them, to massage their feet, to prepare their meals, etc., etc., etc. When they suggested that Guru Kishwara's Babaji come to Calcutta because there are doctors there, they can look after his health, he can have a checkup, he said, "No, I don't ever go to that role of Maya Calcutta." And then I believe it was Bhaktivinoda Thakur said, "But we will send you Bhaktisiddhanta. He will serve you personally. He will take care of you." And then Guru Kishwara's Babaji says, "I will never have anybody serve me directly. Otherwise, I will give up my body." And he immediately ran away and he disappeared for 45 days before turning back again. So, Viparama Rasmabhati Pankujaya Devanamaha. He was such a personification of renunciation for Shukla Paras only came from the pure dedication of his heart and soul to the service of Srimati Radharani. Vanshi Kalpata Vishakta
Gurani Gaura Chandraya Radhikaya Sadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Sadabhaktaya Namo Namo Gaura Kishoraya Sarsad Vairagya Murtali Vipulam Bhadasam Gude Padam Bhujayate तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासीगण समस्त वैष्णवगण मातृवृंद सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज शिष्य गौर के छोटदास बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि श्रील गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज श्रील जगत गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जहाँ चरणाश्रय ग्रहण करें श्रील प्रभुपाद गुरुदेव श्रील गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज जहाँ के जगत जगत दृष्टि से हम देखते पाए स्कूल कलेजे धारण नाई कोनो पढ़ालिखा और शिक्षा ग्रहण करें नाई साधारण जीवन किंतु अपराधी तो विद्या पारदर्शी ये गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज से समयकार नवद्वीपेर पंडित धुरंधर विद्वान श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जख भागवत व्याख्या करस्ताय जेते जेते सुनते पेल তাহার কথাগুলিকে ধরেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার খণ্ডন করলেন। সকলেই দেখি অবাক হয়ে গেল, এ কি করে সম্ভব হল? তো এইভাবে কি করে তিনি খণ্ডন করতে পারলেন যাহাকে নিরক্ষর বলে সকলেই জানেন? তিনি যে অপ্রাকৃত বিদ্যায় পারদর্শী আপনারা শুনলেন। শিলধর কিশোরদাস বাবাজী মহারাজ তিনি রাধা কুণ্ডে সূর্যকুণ্ডে আদি স্থানেতে অবস্থান করে ভজন করতে আর কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে এই বলে প্রার্থনা করেছে। শ্রী নবদ্বীপ ধামের অবস্থান কালে তিনি নবদ্বীপ শহর নবদ্বীপে থাকতেন, গঙ্গা পার করে প্রতিদিন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের নিকটে যেতেন, ওইখানে তাহার নিকটে হরিকথা শ্রবণ করতেন। কিন্তু সেই সময়টায় পরিস্থিতি অনুসারে মহাপ্রভু পরবর্তী গুরুবর্গ গোস্বামী গণের ভজন সাধন আচার বিচার এইগুলি ফলো করতে গিয়ে বহু সমস্ত লোক দেখা যায় ব্রিটিশ আমলে তারা ভজন সাধন বিহীন কদাচার যুক্ত সদ আচরণ বিহীন হয়ে জীবনযাপন করেছে, যার জন্য দেখা যায় আউল বাউল কর্তা ভজা নেড়া দরবেশ সাহেব সহজিয়া সখি ভেগি স্মার্ত জাত গোসাই যত অপসম্প্রদায়গুলি গড়ে উঠেছে। অথচ মহাপ্রভু নাম করে নেড়াড়ি ধর্ম বাউল ধর্ম আউল ধর্ম দুনিয়া ভরে এই সব ঘুরেছে, যা দেখে বিদ্যুৎ সমাজ সভ্য সমাজের ব্যক্তিগণ নাচিকা কুঞ্চল করতেন। তো এমন সময়ে ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ একদিন তিনি এখন ভদ্র বেশ ধারণ করে আদির সাথে ধুতি কাপড় আর শান্তিপুরী ধুতি আর ভালো জামা কাপড় ইত্যাদি পরে বাবু সেজে লাঠি দিয়ে তিনি এখন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কাছে গেলেন। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বললেন কি বাবাজী মহারাজ একই বেশ আজকে এমন কেন
জামাই বাবু কেন
এই যখন জামাই বাবু সেজে তখন তিনি বললেন লোকে বাবাজি বেশ নিয়ে সাধু বেশ নিয়ে তার অন্যায় আচরণ করছে, গলত কাজ করছে, আর দিনের বেলা সাধু রাত্রি বেলা গৃহস্থী হয়। তো কি ব্যাপার বলতে পারে কিছু? আমরা তো শুনি বলি কিন্তু একটু ভালো করে আমাকে বুঝিয়ে না। সেই দেখেই আমি এই মানুষে ঘুরে বেড়ানো ভালো, কিন্তু ওই রকম সাধু বেশ নিয়ে অন্যায় পদাচার কোনদিন সম্ভব না। তিনি বলতেন কি গৌর গৌর না টাকা টাকা বলে এরা দাও, গৌর গৌর বলে খুব মালা জপ করে, কিন্তু উদ্দেশ্য কি? টাকা টাকা, কখন কত টাকা আসবে কত টাকা। এইভাবে তিনি এই অপসম্প্রদায়ের বিরোধী ছিল, বৈরাগ্যের মূর্তি তিনি। নমো গৌর কিশোরায় সাক্ষাৎ বৈরাগ্য মূর্তে, এখনই আপনারা শ্রবণ করলেন বৈরাগ্যের মূর্তি তিনি। কখনো গঙ্গার জল খেয়ে থাকতেন, বালু মাটি খেয়ে থাকতেন, কখনো কাঁচা বেগুন কাঁচা তরকারি এইসব চিবিয়ে খেয়ে নিতেন। বলে বলো জিহ্বা তোমার খুব খাবার লালসা, এই নাও খাও, এই বলে ওই সব গুলি খেয়ে নিতেন। আবার দেখতে পাওয়া যায় আমরা যেমন গ্রন্থের মধ্যে দেখেছি গুরুবর্গের মুখে শুনেছি যে কোন সময় তিনি ভিক্ষা করে এসেছেন, এখন তাহার ভোজন কুটিরের মধ্যে একটি শিকারে কিছু খাবার রাখা ছিল। বাইরের থেকে সব কিছু দেখা যায় সব তো এমনি সাধারণ কুটিরা জল দরজা ইত্যাদি না, কোন এক বৃদ্ধ মহিলা দেখে ফেলতে ওই শিকার উপরে সাপ চড়ছিল, ওর মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। সেই মহিলাটি এসে বলছে কি বাবা বাবা তুমি এই খাবার গুলি খাবে না, ওর মধ্যে সাপ ঘুরতে আমি দেখেছি, সাপে মুখ লাগিয়েছে, বিষ হয়ে গেছে, ওইসব খাবে না ছোড়া। তখন তিনি তো আগে গালি দিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দিলেন, তুমি চলে যাও, আমার ওই বিষযুক্ত ভোজন ওইটাই আমার প্রয়োজন, কিন্তু তোমাদের প্রয়োজন। তো এইভাবে কঠোর বই না। আবার দেখতে পাওয়া যায় যে বিপ্রলম্বর সামুধে বিপ্রলম্বর সের মূর্তি, আমি গুরু মহারাজের কাছেও শুনেছি এক সময় তিনি বললেন গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ এই সমস্ত খেয়ে খেয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি নৌকা পার করে মধ্যরাত্রিতে মায়াপুরে প্রভুপাদের কাছে পৌঁছে গেলেন। প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করলেন আপনি আসলেন কি করে? তখন তিনি বললেন এসে গেলাম, তো আপনাকে কে নিয়ে আসলো? বলে ওই যে একটা বাচ্চা নিয়ে আসলো, আতরে নিয়ে আসলো। বলে সে কেমন কেমন দেখতে? বলে ওই শ্যামলা সাবাল ভালো ভালো করে একটা ছেলে, ওই আমাদের আতরে নিয়ে আসলো। তো এইভাবে ঠারে করে বলে দিলেন যে কৃষ্ণ তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই রকম সিদ্ধি কোন কিছু অন্য কোন চিন্তা ভাবনা নাই, গৌরী গুরুবর্গের নাম তাহারা একনিষ্ঠ আনন্দ খান, গৌর পরিকার হয়ে যে তাহারা সাধনা। আবার দেখতে পাওয়া যায় ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ কঠোর বৈরাগ্যের মূর্তি, তাহার জীবনে পরম ত্যাগ। গৌরী বৈষ্ণবগণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কেহ গোষ্ঠানন্দী কেহ বিবেকানন্দী, একা একা নির্জনে একান্ত থেকে তারা ভজন করেছে। ছিল প্রভুপাদ দেখলেন কি আমাদের অনুশীলনের অভাব, কারণ সৎসঙ্গ লাভ গ্রন্থ অনুশীলন ভক্তি অনুশীলন আমাদের অভাব, তাই তিনি মন মন্দির করে তিনি গোষ্ঠানন্দী ভজন করবার জন্য ব্যবস্থা দিলেন। আগেকার দিনে আমরা দেখছি তারা একা একা থেকে ভজন করেছেন তীব্র ত্যাগ বৈরাগ্য সহকার, কিন্তু আমাদের সেইভাবে ত্যাগ বৈরাগ্য গ্রহণ করে একা একা ভজন করা সম্ভব নয়, যাতে অনুশীলন হয় ভক্তি অনুশীলন। এদের জবাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ওই সরকারি পায়খানার ঘরের মধ্যে গিয়ে বসে থাকলেন, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে। যারা সভায় করতে আসছেন তারা দেখলো যে বাবাজি মহারাজ বসে আছেন, বেরোচ্ছেন না। খবর দিল মিউনিসিপ্যালিটিতে, মিউনিসিপ্যালিটি লোকজন এসে তাহাকে অনেক অন্যায় বিনয় করলেন যে আপনাকে আমরা আলাদা একটা ঘর দিচ্ছি, ওইখানে আপনি থাকুন, পায়খানা ঘর নিয়ে বেরিয়ে আসুন, এখানে দুর্গন্ধ। তিনি বললেন এই বিষয়ে বিশ্বাস থেকে এই পায়খানার গন্ধ অনেক ভালো, বিষয়ী লোকের সঙ্গ কোনো মতে ভালো নয়। যেমন ভজন দর্শের মধ্যে দেখিয়েছেন কি আহিঙ্গনাম পরম মন্দে ব্যাঘ জলম দশা না সঙ্গ সঞ্জমিতা না দেবৈক সেবিনা। বহু দেব দেবীর উপাসনা করে বিষয়ী যারা জঘন্য সংসারী বিষয় মোহনে আসক্ত এরকম ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনো উচিত নয়। আহিঙ্গনাম পরম মন্দে ব্যাঘ ব্যাঘ জলম দশা, বহু দেব দেবী উপাস এই ব্যক্তিগণের সংযোগ রাখি উচিত না। এইভাবে কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ এইদিকে যেমন বিপ্রলম্বর আছে এই মূর্তি, অপরদিকে বৈরাগ্যের মূর্তি, একদিকে সেই রকম রাধা কৃষ্ণের প্রেম রস, সেই বিপ্রলম্ব রস যে চৈতন্য মহাপ্রভু আস্বাদন করে জগৎকে জানাইলেন, সেই বিপ্রলম্ব রসের মূর্তি হয়ে কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে বৃষভানন্দনী রাধারণীর চরণে যারা একান্ত রূপে মন প্রাণ হৃদয় সর্বস্ব সমর্পণ করে দিয়েছেন, এমন যে ছিল গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ আর তাহার চরণে আমরা শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করে তিনি আমাদের প্রতি অহেতুকি করুণা করুন, যাতে আমাদের শীত বল জাগে এই দুর্বলতাকে ছেড়ে তাহার কথানুসরণ করতে পারি। বর্ষা সর্বত্রী
বহুত আচ্ছা বহুত ছত্তিশ তারা সিংহ নে জীবন চরিত্র বৈরাগ্য আর উনকে উপদেশোঁ কো বদলায়। আব দণ্ডী মহারাজ ইয়ে জো ইন্হোনে কাহা হ্যায় ঠিক ওয়েসা হি সংক্ষেপ মে বতলাই।
Was the Param Gurudev also recalls how one time Gaur Kishore Das Babaji was staying in a latrine and then doing his bhajan. And many people came, they were looking for him, where is Babaji. And many people came, and even many police people. But then he would not open the door. He said when he saw being in a latrine, the smell of his stool is really not very pleasant. But that did not bother him. So that shows is the amazing level of the prema bhakti, that it did not bother anything of the mundane material world smell. He was smelling the Radha Krishna prem. So that overrides all these mundane things. And then how Srila Param Gurudev came and he opened and then he blessed him that I will take all the difficulties that might come upon you. Remember that. He was regarding the Vairagya, Mahabharat Vairagya, many kinds of Vairagya, Pasu Vairagya, Shuska Vairagya, monkey,
market
Vairagya, Prasava Vairagya, so many kinds of things. But what Babaji, Gaur Kishore Das Babaji, is amazing thing. How one time when he was crossing the Ganga, how he was, Srila Prabhupada was wondering how he was able to cross the Ganga and also walk from Ganga to the Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, appearance place. So that shows approximate. Even though he was living in this world, but every moment of his life was approximate. That's why Prabhupada also said his deha was aprakrit. No mundane person can touch it. Only a person who Prabhupada himself aprakrit can actually can do sparsha. Many amazing things. It's a great fortune that we have such an amazing personality in our lineage of the parampara. That today even a drop of it must be my flowing and will be really grateful to Mancha Kalpata Vidyasa.
भक्ति वेदांत माधव महाराज जी बाबा जी के चरित्र का वर्णन करेंगे।
अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी
ओम ज्ञानमिदान्तस्य जैनंदन सलाकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विक्रमहर शंभुदे पदंबुजायते नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मैं श्री गौर किशोर दास जी महाराज के चरण कमल में पुष्पांजलि देने के पहले मैं अपने परमार्थ गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परिव्रजक आचार्य वर्ज अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडों से जपन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित निवासगण दंडवत प्रणाम। हम लोग विभिन्न वक्ता के सहयोग से गौर के संबंध में सुन रहे थे। इनके प्रणाम मंत्र में कहा गया नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये। ये वैराग्य क्या है? कहा गया विराग का भाव वैराग्य। विराग अर्थात वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जो वासुदेव भगवान वासुदेव चरण में किसी के भक्ति योग हो तो क्या होगा? ज्ञान ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान और वैराग्य विषय के प्रति विराग अपने आप होगा। अंदर इनको वैराग्य मूर्त क्यों कहा गया? विशेष रूपे न राग कृष्ण के चरण में के द्वारा था श्रीमती राधा के चरण में उनके स्वाभाविक उनके चरण में स्वाभाविक राग होने के कारण उनको वैराग्य मूर्त कहा गया। और इनके बताया विरह महोत्सव विरह जानी अभी राजमन संवाद चल रहा था तो महाप्रभु प्रश्न पूछेंगे रामंदर उत्तर देंगे। पूछा विरह के बीच में सबसे अधिक विरह क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया कृष्ण विरह दुख बिना दुख नहीं पड़ो। कृष्ण विरह दुख सबसे बड़ा दुख है। भक्त विरह दुख ही सबसे बड़ा दुख है। जब महाप्रभु नवद्वीप में संकीर्तन करते थे उस समय एक दिन का पुत्र मारा गया तो महाप्रभु पिछले बार बताया पुत्र बलि जाए प्रभु ये बड़ा कथन कृष्ण विरह दुख प्रभु ना जाए सहन। उसमें भी दिखाया कृष्ण बड़ा विरह कृष्ण भक्त विरह कितने मर्मदायक है। ऐसे उनका नाम में गया और उनका जन्म हुआ था पूर्व बंगाल में और किशोर अवस्था में घर छोड़ करके आ गए थे नवद्वीप धाम में
वृंदावन में।
सर वृंदावन में आ गए थे कभी कभी वृंदावन में रहते ब्रज में कभी नवद्वीप में।
वो ऐसी कभी नहीं वृंदावन में राधा कुंड नंदगांव बरसाना सब अंत में सूर्य कुंड में रहे और अंत में
नवद्वीप
धाम में फिर नवद्वीप से वो नहीं गए।
उनके आखिर जीवन में नवद्वीप में आए और नवद्वीप छोड़ करके कभी नहीं गए। जब उनको अच्छा खाने की इच्छा होती नीम पत्ता जमा के वो केले खा और खाली और खाएगा लेता और कभी कभी भूख लगने पर जमुना जी का या नहर का कीचड़ खा लेते। ऐसे कारण के कारण उनका दोनों आंखें चली गई अंधे हो गए। लेकिन जागृति रूप से अंधे होने पर भी परमार्थी रूप में अंधा नहीं है। ऐसे क्यों किया कह रहे प्रभु अंधा करे दाओ अंधा करे किचो देखने चाहिए ना मिट्टी नहीं रख लो। ये संसार में जो माया है ये चाची का सब आकर्षण करता है। इसलिए कह रहे भगवान भाई हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जगत की चाची का नहीं देखना है हमें राधा कृष्ण की चाची का देखना है। इसलिए अंधवत अभिनय किया है। अंध हो जाते तो माया को कैसे चले बाल के समय और समस्त बोलने कैसे सुनते थे। इसलिए ये अंधा नहीं थे। हमारे हम अंध होने के कारण किसी अंध होने के कारण हमारे दृष्टि से अंध थे पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। जब 1916 साल में हमारे परम गुरुदेव जी सोमनाथ के पास आए उस समय श्री गौरी महाराज एक परित्यक्त कारखाना में भजन कर रहे थे। जब म्यूनिसिपैलिटी के श्रीमान का पता चला खबर दिया पुलिस एसपी आए डीएम आए बहुत कुछ निवेदन किया उनको उधर से निकालने से मैं अत्यंत अस्वस्थ हूँ। थोड़ी देर के बाद हमारे परम गुरुदेव उनके बुआ सरोजवासिनी देवी पहुंचे बताया प्रभु दरवाजा के लिए बता मैं अत्यंत अस्वस्थ हूँ दरवाजा खोल नहीं सकता जो पहले नियम उनको बताया था वही बताया मैं अत्यंत अस्वस्थ हूँ तब बताया मैं सरस्वती ठाकुर हम लोग सरस्वती ठाकुर के अनुग्रहित हूँ जैसे सरस्वती ठाकुर ने नाम सुना तो क्या हो गया अत्यंत अस्वस्थ था अति अंत अत्यंत जो पहले अस्वस्थ अति था उसका अंत हो गया और अस्वस्थ नहीं रहे और अस्वस्थ अशेष रूपे न सुस्थ मैं तुम लोग मेरे अशेष रूप में सुस्थ हूँ आकर के दरवाजा खोल दिया और हम लोग के परम गुरुदेव और सब लोग अंदर जाकर उनको प्रणाम किया तब बाबा जी महाराज ने कहा हमारे परम गुरुदेव को देखो तुम्हारे जीवन के जितने आपद विपद तार दायित्व में अपने सिर पर लेता हूँ तो निर्भय होकर प्रचार करो जगत के किसी प्रकार के बाधा विपद तुम्हारा आगे आगे नहीं आ सकता हम लोग गुरु जी से श्री मुख से सुना जब परम गुरुदेव
गुरु जी का आदेश बिना आचार्य पालन करना चाहिए गुरु और आदेश
कभी निश्चित रूप में और अशेष रूप में विचार करके करना पड़ेगा। तो विचार करके देखा वो गुरु जी के मन का भाव जानते थे। इसलिए गुरु जी चाहते हैं कलकत्ते में जाकर के सबसे पहले बता दिन बचा की कलयुग में मंगल करो। इसलिए गुरु आदेश ही निश्चित रूप में अशेष रूप में विचार करके ही किया। इसलिए सबसे सुश्रेष्ठ गुरु सेवक है। और भी दिखाया जैसे लोकनाथ गोस्वामी गोष्ठान भजनानंदी और नरोत्तम ठाकुर गोष्ठानंदी, ऐसे ही प्रभुपाद गोष्ठानंदी और उनके गुरु गौरी महाराज भजनानंदी, ऐसे नरोत्तम ठाकुर अपने गुरु जी का पैदा सेवा करके उनसे प्रसन्न करके उनसे दीक्षा ली, ऐसे प्रभुपाद को गौरी महाराज दीक्षा देना नहीं चाहते थे। मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दू, तुम भक्ति में ठाकुर जी से पिता के सुपुत्र हो, तुम खुद नहीं इतना बड़े विद्वान हो, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, भक्त ठाकुर ने कहा अच्छा ठीक है मैं गो सुंदर से पूछूंगा। फिर दूसरे से पूछा वो मैं भूल गया, एक हफ्ता बाद ऐसे कई बार टाल दिया। जब ऐसे नहीं हुआ तब प्रभुपाद ने चंद्रायन व्रत की, जैसे चंद्र दिन के दिन बढ़ रहा है घटता है, ऐसे एक रास दो रास करके पूर्णिमा तक 15 रास फिर अमावस्या तक कुछ नहीं खाए और हाथ में उठा नहीं गोमरास गैया के सुख से खाती है, ऐसे खाती है तब उसका हृदय पिघला, तब उनको दीक्षा दी। ऐसे करके भक्तिनाथ ठाकुर के पुत्र होने पर भी वो गोरभूषण दास वाली मां से दीक्षा लेके जगत के दिखाया कि ये कितने बड़े महान है। अभी और कुछ लोग बोलेंगे और मेरे एक घंटा भी हो चुका है, नहीं कार्य में समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा गोल्प तो दुख
आपने वो कहा गया
विष्णु ड्राइवर
हिंदी
विष्णु
स्पीक
विष्णु ड्राइवर
नो नो वो तुम हाँ, तुम बोलो जो कहा है जो कहा उसको बोलो अंग्रेजी में।
ओम जानति मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो पूज्यवान माधव महाराज एक्चुअली टोल्ड दैट श्री गौरीशंकर बाबाजी महाराज ही एक्चुअली टू भजन ही केम टू वृंदावन, समटाइम्स ही यूज्ड टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन वृंदावन बट फाइनली सेटल्ड एट सूर्यकुंड द मध्यान्ह पास्ट टाइम्स ऑफ राधाकृष्ण द प्लेस ऑफ मध्यान्ह पास्ट टाइम्स। Later on, he was always calling Har Radhe Har Krishna, Har Radhe Har Krishna. But seeing that Radha Krishna not giving mercy and Chaitanya Mahaprabhu is actually more merciful than Radha Krishna, so he came to Navadev Dham. Navadev Dham is very merciful and in chanting the name of Gaur Nityananda, there is no consideration of offense. He was very tired of people asking him so many material favors. So therefore he locked up himself in an abandoned latrine. And so many people came and told him, the district magistrate came and the collector came and they told, please open the door, we will make you nice bhajan kutir and you can do bhajan there. But he said, I am asya aswastha, I am not in a good shape, I am not in good condition and I cannot get up to open the door, I have no strength even to open the latch. So then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada actually came. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada said, you know, we are Brahmachari and two more devotees. So when Vinod Bihari Brahmachari came, he told that we have been blessed by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. He had accepted as our disciples. So we have come on his order. So please open the door. So that time he said, I am Ati Aswastha. Actually he said, Atyanta means my everything has now ended, all my disease is gone, having heard that you are blessed by Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and I am feeling much better, so I open the door. So Pujya Madhava Maharaj actually explained very deep meaning of this, that Sustha, I become now okay, I am perfectly well. So then he opened the door and then he told Vinodhyaya Brahmachari that actually I bless you that all the obstacles in your life will go away. And in your bhajan and your preaching there are no obstacles. I make sure
I am taking, I am taking
all these
burdens. I am taking all those obstacles on my head. And by the power of his bhajan, he destroyed those obstacles. The obstacles that were going to come in future, he took on his head. So Vinodhyaya Brahmachari, later on, became Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. He told that so many obstacles came in my preaching. And whenever he used to recount this experience, tears used to flow from his eyes. And he used to tell that my Param Gurudev, Srila Gaur Kishore Babaji Maharaj, took away all the obstacles from my life. Many times, it was so dangerous, and so many times, so many obstacles came, but only by the blessing of Srila Gaur Kishore Babaji Maharaj, all the obstacles are gone forever and nothing harmed me. So Srila Pujya Madhava Maharaj was telling that Srila Gurudev also went on world tour so many times, and Madhava Maharaj had good fortune to accompany Srila Gurudev, and so many times, so many obstacles they faced, but by the mercy of Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, who himself is the recipient of the mercy of Gaur Kishore Babaji Maharaj, all the obstacles also vanished. So, Srila Gaur Kishore Babaji Maharaj actually used to come across the Ganges River and used to come to meet Srila Bhaktivinoda Thakur. And there, one time when he was crossing the Ganges River, actually Gaur Kishore got Sri Chaitanya Mahaprabhu himself in the form of a small boy, little Gaur Kishore, brought him across the Ganges River. So, also his renunciation was very helpless. His renunciation, sometimes he would eat the mud from the Ganges River, sometimes he would eat the grass, and because of that he had become blind. So Gaur Kishore Babaji Maharaj actually had a very illustrious disciple. His name was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada was actually son of Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, as you know, that is Gaura Shakti. Actually, being Gaura Shakti, to have Gaura Shakti as your father, and also Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada was very learned. He had mastery over astrology, astronomy. He knew Sanskrit, mathematics perfectly well. And he had command over devotional scriptures. And childhood he had received Harinam from Bhaktivinoda Thakur. He had received the Nrisingha Mantra from Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur had given Purva Shila, Purva Shalidam Shila to worship. But despite all these qualifications, when he saw Srila Gaur Kishore Babaji Maharaj and he saw his renunciation, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada said that this personality has something which I don't have and I want to obtain what he has. He seems to disregard all the good qualifications I have and nothing impresses him about me. So he seems that, so therefore he approached Gaur Kishore Babaji Maharaj. He said, I want to accept you as my guru. You please give me Diksha Mantras. I surrender my everything at your lotus feet. I will not accept anyone but you as my guru. And Bhakti Siddhanta Saraswati used to lament that I have all the qualifications, but these qualifications are insignificant compared to what Gaur Kishore Babaji Maharaj has. His treasure of love of God is actually so monumental that my all these material achievements seem insignificant. So then he repeatedly asked Gaur Kishore Babaji Maharaj, and Gaur Kishore Babaji Maharaj said, I will ask Gaur Sundar tomorrow, I will ask Gauranga Mahaprabhu tomorrow. And in this way, he was delaying. So finally, Bhakti Siddhanta Saraswati flight was noticed by Srila Bhaktivinoda Thakur. Also Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada took Chandrayana. Chandrayana means that for 15 days as the moon is increasing and decreasing, according to the size of the moon, you take one morsel, two morsels, three morsels. On Purnima day you take 15 morsels, but on new moon day you completely fast. And you have to take only some rice and some moong dal, which is very very austere. And that too, you have to put it on the floor. And you have to bow down your head and eat from the floor, eat off the floor. It's a very intense work which is meant as an atonement for some sins in scriptures. But Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he took this Chandrayana work not to do any material atonement. He wanted a most excellent spiritual master in the world. So finally, Gaur Kishore Babaji Maharaj, he told him that that should bear your characters as you come. And Srila Gaurakishore Babaji Maharaj accepted one and only one disciple, and that was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, you are the only disciple, you are ordered. But Srila Gaurakishore Babaji Maharaj is actually Bhajanandi. He told Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, do not go to Calcutta. Calcutta is the capital of Kali. So if you go to Calcutta, it will not be good for you. But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he understood the heart of Srila Bhakti, Srila Gaurakishore Babaji Maharaj. He knew that Srila Gaurakishore Babaji Maharaj is actually telling, in the matter of love, yes is no and no is yes. When Srila Gaurakishore Babaji Maharaj was telling, don't go, it means that you must go. You must open up Mandir Mahapajar. You must deliver all the personalities, all the young boys, Vinod Bihari Brahmachari, Raman Brahmachari, Kunja Bihari, Prabhu. All these great souls are waiting for you. They will come here and assist you. And so, understanding innermost purport of the heart of Srila Gaurakishore Babaji Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati went to Calcutta, he opened the Mahapajar Mutt, he opened their printing press, and he created the team of solid brahmacharis who are very educated and were sent by directly by Sri Chaitanya Mahaprabhu to assist Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. So, in this way, it is said in the scripture that Guru Agya Vicharanya, one must always follow the order of Gurudev. So, understanding the innermost heart of Gaurakishore Babaji Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada established the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which our Gurudev is carrying on all over the world. Hare Krishna.
Ashram Maharaj, 5 minutes.
Only 5 minutes.
Tasmay Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gopakya Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, by God's mercy of Shri Shri Guru Gauranga, we are celebrating the disappearance day of Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. So, previous speakers, they have spoken extensively on his pastimes. So, I just want to touch on some things that some of the other speakers have not discussed. So, it's explained that Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he took Babaji Vesh from a disciple of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj called Bhagavat Das Babaji Maharaj. And then, he stayed in Vrindavan in the mood of the Goswamis. Hey Radhe, Vradadevi, Kate, Lalite, Hey Nanda, Sunoputam. That sometimes in Nandagam, sometimes Govardhan, sometimes Radhakun, Shamkun, and sometimes he stayed in Suryakun. Srila Gurudev previously he stated that Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he stayed in Vrindavan for some 20 years. That he is a liberated soul. But he's showing us by his example how one should take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That after 20 years, then he was thinking that the goal is to achieve Krishna prema. And that here in Vrindavan, that though Vrindavan is very, very merciful, but when one makes aparads within Vrindavan, then one will have to undergo those reactions before one will achieve one's goal. So, showing not that he is in that position, but to teach the conditioned souls, then he left Vrindavan and he went to Sri Navadvip Dham. It's explained that when he was in Sri Vrindavan Dham, that he would live so austerely, that he would, for clothes, that those clothes that were left when bodies had been burnt in the burning ghats, that he would take them. That for food, sometimes he would take mud from Radhakund, from Yamuna. And that sometimes he would mix the food with neem leaves. That would glorify Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. Sakshat Vairagya Muttai. Nama Gaur Kishwaya Sakshat Vairagya Muttai. That is directly the embodiment of renunciation. Other speakers have explained that what is the meaning of this renunciation, Vairagya, Vishesh Rupena, that a very special type of wrath. That what is the nature of wrath? That when the lover is anticipating meeting with the beloved, that there may be so many uncomfortable situations, but because of the deep wrath, deep attachment, then that lover will never feel the inconvenience, but will only feel pleasure. So Srila Gaur Kishwara Das Babaji Maharaj, because of his absorption in the pastimes of Radha and Krishna, Radha Krishna Gunasmite Madhurivana Nena Samohito, completely absorbed in their pastimes, then the byproduct of his absorption in these pastimes was that so many austerities would be performed. Sankirpu Vaka Namagana Natibi Kalabasani Krito. That is stated that his bhajan was such that just as Srila Raghunath Das Goswami is stated that his adherence and his renunciation were like lines on a stone that they could not be moved off. In the same way, Srila Gaur Kishwara Das Babaji Maharaj, his renunciation, which was born of his absorption in the pastimes of Radha and Krishna, were so deep that they were unflinching. That sometimes he would perform Ekadashi Vrat, and he would be so absorbed in the pastimes of Radha and Krishna that Ekadashi Vrat would go for 2 days. That he would give up eating, sleeping, all these activities. And also Srila Gaur Kishwara Das Babaji Maharaj, he was so absorbed in his pastimes, Shakshat Vairagya Muttai Vipralamba Vasambodho. That Vipralamba, that what is this Vipralamba? That Srila Narayana Das Thakur has explained, Gaur Prem Rasnabe Setarange Devadube Se Radha Madhav Antaranga. That one, just as Sri Chaitanya Mahaprabhu, in mood of separation, in the mood of Srimati Radhika, is always calling out for Krishna, that those followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that they are in this Gaurapray Rasaname, this ocean of Gauraras. But diving deep into this ocean of Gauraras, externally there's separation, but internally there's very, very deep meeting. So this was the situation of Srila Gaur Kishwara Das Babaji Maharaj. And in this way he came to Sri Narayanadam, and here he manifested very, very super excellent pastimes. So just in conclusion, he was so uncompromising with duplicity. Yesterday we were in Kadevan, place of where Bhagasura was killed. So in the same way, that if there was any duplicity, then Srila Gaur Kishwara Das Babaji Maharaj, he would not tolerate. That though he was blind, sometimes in the middle of night, he would get up. He'd say, ha ha, just see, this Babaji is in this place enjoying with this widow. And this and this. And he would just point out and expose them. And when people would come to him, and they would come for some mercy, as Pujapat Bhaktivinoda Maharaj would explain, that he said, here, you take door open. Meaning that you come, you leave everything behind, you give up the poison of sense gratification, and you take shelter of the holy names of the Lord. Myself, I am such a lowly person, dressed in the sannyas garb, but I'm a very duplicitous person. So on this day, I'm praying to Srila Gaur Kishwara Das Babaji Maharaj to please shower his mercy upon me so that I can give up duplicity and be one point in the lotus feet of Srila Gurudeva.
Don't repeat what others have told.
First of all, very sincere, to the spirit of my spiritual master, Srila Prabhupada, Srila Gaur Maharaj, and Srila Gurudeva. Namo Gaura Kishwara, Sakshat Vairagya Muttai. Vairagya means no attachment. Vairagya. Raga means that towards which the mind is flowing naturally without any effort. Every conditioned soul's mind is flowing naturally towards sense objects. But Vairagya means to stop this. And also it means to have developed a special taste. Therefore, it is very easy for one to renounce if one has developed a higher taste. It is quite improper for me to speak. I'm a very neophyte sannyasi. My pronunciation is very meager. So it's quite improper to speak of such a renounced person, an embodiment of renunciation, but on the order of Gurudeva, I have the audacity to speak a few words. So, Gaurakshita Babaji Maharaj, he was an embodiment of renunciation. One day he said, today we will have a big festival. And his disciples said, his followers said, oh, what kind of festival? Today we will stop eating anything and just remember Mahaprabhu. This is Mahotsav, this is festival. When he's down with his mind with some time, comes and decided to eat something, he said, oh my tongue, you want to enjoy, take this. And he would take some juice of neem, very bitter, or take some mud and eat it like that. As he was specifically empowered by Mahaprabhu to expose those who were deficient, as Maharaj just said. Whenever someone would come to him with improper motive, he would expose it very, very strongly. He was specifically empowered to denounce all the pseudo renunciation of the pseudo renunciates. At that time in Navadvip, most of the people were taking Babaji Vesh, but indulging in illicit activities. Or they would take Babaji Vesh as a means for livelihood or a means to get reputation. Many times some so-called renunciate would approach him and say, Babaji Maharaj, let me stay next to you. And he would advise them, but later on they would disregard his advice and go and indulge in some activity. And he would always end up in the arms of some woman, and he would denounce that and say, oh, just that boy, just see what he has done. And sometimes devotees would ask, but Babaji Maharaj, he came to you, he seemed like a good person, why he has not benefited? And he said something very special. He said, he has left before the fruit of association with sadhu has manifested. Therefore, externally, he will be able to give up eating fish, eating meat, in front of some morality, but you won't get bhajan, you won't get the fruit of bhajan.
I have collected a very beautiful Krishna darshan.
One time, one man called Sambhu Bhavo, he came to him, he had just married. And he said, oh Babaji Maharaj, I have come, I have married a Krishna Dasi, please we want your blessing. He said, oh, you have married a Krishna Dasi. So she's not to be enjoyed by you, she's Krishna's property. So you should cook for her every day and offer food. And after she has eaten, you should take her remnants mixed with salt. This is honoring the Krishna Dasi. Don't you dare to touch her, she's Krishna Dasi. Even if that man just ran away,
Babaji Maharaj, kripa karo, kripa karo.
Also somebody asked him, oh Maharaj, please give me mercy. You want mercy? Take this door and come in. No, I'm in underwear. This is my mercy. Once a king came to him and said, oh, I have done some, organized a big sabha, big festival. We will have so many people coming and we discuss Harikatha. He said, no, no. If you want your own welfare, you come and stay with me and we will discuss about Krishna together. If I go there, it will not be good for me.
Uttam Prabhu, Hong Kong, please meet with me after class. Uttam Prabhu and Nandan Prabhu.
Hindi. 5 minutes.
No.
5 minutes.
Gurave Gaura Shankara Adhikaya Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Gurudev Vaishnavas Dhanvans. So since the pastimes of Srila Gaurakishwardas Goswami Maharaj are very, very instructive, especially in terms of Guru Tattva. Sometimes the Babaji's in Radhakund, they criticize our Guru Parampara. They say, oh, what is this Bhagavad Parampara of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? They disregard the Bhagavad Parampara and they accept the body Parampara called the Diksha Parampara. But compared to the Diksha Parampara, the Bhagavad Parampara is superior. Therefore, this was established by Srila Gaurakishwardas Babaji Maharaj. It's Kiva Vipra, Kiva Nasi, Sudra Kenanoi, Krishna Tattvati, Sai Guru Hoy. Thakur Bhaktivit, Srila Gaurakishwardas Babaji Maharaj, such an amazing renunciate. We've heard so many amazing stories. But who is his Shiksha Guru? Srila Bhaktivinoda Thakur, who married twice and had more than 11 children. How? Therefore, you can imagine the spiritual vision of Srila Gaurakishwardas Babaji Maharaj, that he would go and hear the Harikatha spoken by Thakur Bhaktivinoda at Surup Gunj, at Surup Gunj there. Therefore, when we examine Guru, we should not look for any external things. Gurudev is very loaded. Gurudev is very looking.
Where you have read that he has done
two marriages.
Two marriages?
Yes.
Where?
His first wife died. After childbirth, his first wife died.
Bole pratham stri mara jar pore abar bibaha karen.
So when we examine Guru, we should look, is the current of pure devotion in him or not? We should not look in terms of high birth, education, or wealth. Therefore, Srila Gaudashwara Babaji Maharaj, he would go there constantly and hearing the Hari Gita from Sri Thakur Bhaktivinoda. Also, another point is there. Sri Thakur Bhaktivinoda, he was thinking, I will take renounced order, sannyas vesh. So he thought, I will take only for one person, that is Srila Gaudashwara Babaji Maharaj. So when Babaji Maharaj heard, Thakur Bhaktivinoda, my Shiksha Guru, wants to take vesh from me, then what did he do? He hid, there was like one very bad neighborhood where prostitutes and stuff would stay. So Gaudashwara Babaji Maharaj went there and was hiding. Because he knew Bhaktivinoda Thakur was of such a high moral standard, he would never go there to search for him. So when Bhaktivinoda Thakur searched everywhere but could not find him, then Gaudashwara Babaji Maharaj was laughing. Today I cheated the Thakur. So he was such a wonderful personality. Especially, we have come to the line of Mahaprabhu. So Mahaprabhu instructed, Marakat Vairagya Nakore Lokere Dakam. Don't perform monkey-like renunciation. Monkeys live in the forest, they have no clothes, they only eat fruits. But a monkey is not a sadhu, because inside he has so many material desires and 15 or 20 lady monkeys in the background. Therefore, Mahaprabhu said we should follow this, what's it called?
Yukta Vairagya.
Mahaprabhu said we should engage everything in the service of Sri Krishna, and this is real renunciation. The problem with myself, in the name of Yukta Vairagya, we are actually enjoying. That is the problem. No? In the name of Guru Seva, we are actually become Guru Bhogis. Actually, and taking all the property of Krishna for our own enjoyment. Therefore, Srila Gaudashwara Babaji Maharaj was like a thunderbolt in this regard. Therefore, one time, they took all the stories, so there's only a few left. One time, the disciples of Babaji, some followers of Sri Gaudashwara Babaji Maharaj, they were going to hear Hari Gita from one very, very learned person. And he was speaking Venugi, Pranayagi, very, very esoteric topics of Rasleela. Then the disciples came, oh Babaji Maharaj, you should also come and hear that Kata. It's so much nice topics, high topics of Rasleela. Then Babaji Maharaj said, anyone who goes there can never come back to me. You are hearing Radhe Radhe, but I am hearing Radhe Radhe. Rupi Rupi. So anyone who goes there can never come back to me. And that place where that speaker was, you should dig up the earth, throw it in the Ganga, and purify that place with cow dung. Gorama, Gorama, Mukabala Nachari, Gora Acha, Gora Bicha, Bujale, Palapas. Only saying by now, I belong to Gauranga, it's not enough. One has to follow the teachings and the precept of Chaitanya Mahaprabhu, then one can be called a follower of Mahaprabhu. One time, one man from Calcutta came and gave one very nice chada and 5 rupees to Srila Gaudashwara Babaji Maharaj. That time Srila Babaji Maharaj manifesting pastimes of blindness. But again and again he was stroking that nice chada and feeling 5 rupees is there or not, 5 rupees is there or not. So one man he was seeing that and he thought, I thought Gaudashwara Babaji Maharaj was a great renunciate, but he's so much attached to this chada and always checking, he has these 5 rupees. So when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur heard that, he became like a thunderbolt. Fool, you do not understand the glories of a Vaishnava. Babaji Maharaj is not attached to the nice chat of the 5 rupees. He is only doing like this to encourage that man in Vaishnava Seva. But you cannot understand his glories. Because the next day Babaji Maharaj gave that chatter and 5 rupees to someone else. So Babaji Maharaj, he is of course a perfected soul, and we are not even sadaks, sadakabas. But we hope that he can bless us, that really we can slowly, slowly develop as true followers of Srila Chaitanya Mahaprabhu. Srila Gaudashwara Babaji Maharaj.
Shandarani, 5 minutes.
First, I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Vishnupadev, Nityalila Pravishta Om Vishnu Park, a stoveless of Sri Srimachal Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Shikshi Gurudev, Om Vishnu Park, a stoveless of Sri Srimachal Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Shilgurudev has ordered me to speak for a few minutes on the glory of Shilgurudev Kishordas Babaji Maharaj without touching on the very beautiful katha that have been spoken by the previous speakers. So, just I'll try to add a few notes to what has already been spoken. That is, we've heard that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur tried many times to have Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj accept him as disciple, but he was refused until he threatened to end his life. So Srila Gurudev explained that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wrote in his Gaudiya Patrika. Of course, he is just as renounced and just as humble as his Gurudev, but in his Naralila, in order to teach us how the mood of the disciple should be towards his Guru Maharaj, he wrote in his Gaudiya Patrika that I was feeling very proud. I was thinking, no one is as good a speaker as I. No one knows Tatvagyan as good as I. No one is as powerful in philosophy as I. So when my Guru Maharaj rejected me so many times by saying, you're so beautiful, you're the son of Srila Bhakti Vinod Thakur, you're such a great scholar, he actually pulverized my pride and thus made me qualified. So Srila Gurudev said in that regard that because, as the other speakers have said, the Babajis were, in Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj's own words, hooligans, and if anybody would take their name, they would become sinful just by taking their name. Because in the name of Harakiya Ras, they were engaging in so much mundane lust. So Gurudev said, therefore, there was a need for a great personality to come and spread the pure Vaishnava cult all over the world. And that was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and his powerful arms that went all over the world. But, then Gurudev said, but if it was not for Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj, there would be no Srila Prabhupada. If there was no Srila Prabhupada, there would not be his arms like my Gurudev, Gurudev's Gurudev himself, and so many other pure devotees. But his origin is Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj. So though, although he appeared as a Bhajanandi, he actually gave so many perfect examples in his own life, knowing full well, because he knows past, present, and future, that his teachings, based on his own pastimes, would spread all over the world by the medium of his disciples. Srila Gurudev said nobody can touch his bhajan and nobody can touch his renunciation, but we can touch the examples that he set, as previously mentioned. If I could just mention one thing, that regarding his bhajan, you know that he wrote the song, Kothai Prem Mai Rati Rati, Rati Rati Go, Jai Rati Rati. Srila Gurudev told us back in the 90s that this song is the Maha 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 Mantra. Five times he said it, and then Gurudev began to weep. Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj is singing the glories of Srila Raghunath Das Goswami, that Gosai, this Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, is calling out to Radhe, if you don't give me your darshan, I won't be able to maintain in my life. That is exactly as Srila Raghunath Das Goswami prayed to Srimati Radhika, Taralokena, that is, if you, oh Krishna, you've almost killed me by the snake of separation. You've taken my Srimati Radhika away by taking away the darshan that I was having in the mood of Sri